अल्लाह तला कहते हैं वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। ये दो दफ़ा आयत है, जहाँ पहली दफ़ा बारी है, आगे जाके जहाँ बनी इसराइल का किस्सा पूरा होगा ना, आप देखेंगे वहाँ भी आयत आएगी। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे ये देखिए मेरे हाथ दो ब्रैकेट्स हैं, आपने इंग्लिश में देखा होगा ना, जब हमने एक टॉपिक शुरू करना होता है ना साइड इशू, तो बीच में एक ब्रैकेट लगा देते हैं, फिर चीज़ लिखते जाते हैं, जहाँ वो बात पूरी होती है तो एक एंडिंग ब्रैकेट है। ये जो सबक इस वक्त हम पढ़े ना, ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर से बात शुरू हो रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ भी या बनी इसराइल उस्कुरू है, वत्तकू यौमन है, और आखिरी लेसन्स भी जब आएंगे ना, तो वहाँ भी ये दो बातें हैं कि इसके बीच में है ये बनी इसराइल के 40 साल। ठीक है, क्या कहा? वत्तकू यौमन ला तज्जी नफ्सुन नफ्सिन शैया, और उस दिन से डरते रहो जब ना तो कोई दूसरे के काम आ सकेगा और ना इसके हक में कोई शिफात की जाएगी, सिफारिश कबूल होगी, और ना किसी से फिदिया लिया जाएगा, और वला हुम युनसरून, ना मदद दी जाएगी। आप नोट करके लिखिए, नंबर वन क्या है? ला तज्जी नफ्सुन अन नफ्सिन। दूसरा क्या है? ला युकबलु मिनहा शिफातुन। तीसरा क्या है? ला युखज़ु मिनहा अदलुन। और चौथा क्या है? ला हुम युनसरून। ये है चार बिगाड़ के नुक्ते जो अकीदे आखरत को बिगाड़ देते हैं। लिख लें, अकीदे आखरत अपनी जगह पे बस एक डॉगमा है जी, हम आखरत को मानते हैं, हम जन्नत को मानते हैं, हम जहन्नम को मानते हैं। क्या आज हम मुसलमान नहीं कहते ये? क्यों फिर मानने के बावजूद नेकी के काम नहीं करते, और क्यों गुनाह से नहीं रुकते? क्योंकि इन चार में से एक मुसीबत पड़ी होगी। आज भी आप उम्मत मुस्लिमा पे रख के देख लीजिए, जिस मुसलमान को आप बेअमल देखेंगे ना, उसके पीछे इन चार में से एक वजह होगी, और वो क्या? कि कोई मेरे काम आ जाएगा, वो मेरे अब्बा हाफिज़ हैं, वो काम आ जाएंगे, वो एक हाफिज़े कुरान जो है वो 70 लोगों की शिफात कर देगा, और बच्चे माँ बाप की सिफारिश कर देंगे, दिस एंड दैट। आप देखिए नफ्सुन अन नफ्सिन, बोझल ना पड़े ना, तो ग्रामर के एतबार से ये नकिरा है। एक क्या होता है? मारिफा, एक होता है नकिरा। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको आप? प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है यहाँ नफ्सुन अन नफ्सिन, यानी कोई खास तो खास, आम से आम बंदा भी किसी के काम नहीं आएगा। अमूमन हम क्या सोचते हैं? खास लोग हमारे काम आ जाएंगे ना, नेक, वली, बुजुर्ग, पैगंबर। अल्लाह कहता है वो तो खास लोग है ना, आम बंदा भी दूसरे के काम नहीं आएगा। नफ्सुना नफ्सिन, मैं इसको पढ़ती हूँ ना, बिल्कुल मुझे तन्हाई लगती है, ऐसे लग रहा है कोई कह रहा है अपना बोझ खुद उठाओ, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। आम हालात में हम दुनिया में एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, शौहर भी करते हैं, बाप भी करते हैं, बीवियां सभी करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब गुस्सा आ जाता है, तब कहते हैं खुद करो, मैंने कहा था ना इतना सामान नहीं लेके आना, अब खुद उठाओ। बच्चों को भी माएँ डांटती रहती हैं। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने साफ कह दिया ज़र्रा बराबर, और आगे आप देखिए शयन के साथ और ताकीद है, कुछ भी नहीं। नफ्सुना नफ्सिन में भी शिद्दत है, और शयन कुछ भी नहीं, ज़र्रा बराबर नहीं, कि कोई गलती ना दिमाग में लेके आना, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन किसी के काम आता है? माँ। सवाल पैदा होता है कि वहाँ क्यों काम नहीं आएंगे? ये एक नुक्ता आप लिखिए अपने पास, सवाल लिखिए कि भाई क्यों काम नहीं आएंगे। तो नंबर एक, इजाज़त नहीं होगी, अल्लाह का हुक्म ही नहीं है। दूसरी बात है कि दिल से रहम के जज्बे निकल जाएंगे। आज दुनिया में माँ गीले बिस्तर पे सो के सूखे पे क्यों आ जाती है? क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में डाला हुआ है रहम, है ममता, है बाप की बिपता, है रहम के, मोहब्बत के, हमदर्दी के सारे जज्बे उस दिन मांद पड़ जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आ सकेगा। अल्लाह के नबी तो अपनी बीवियों से भी कहा करते थे कि आयशा, ए फातिमा, ए फलां, आपने अपने वक्त में हर आयशा को अपना अमल कर लो, कल क़यामत के दिन मेरी आस पे ना आना। ठीक है नबी फ़ायदा देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ काबिलियत तो होनी चाहिए। हज़रत आयशा ने एक मौके पे बड़े प्यार से पूछा था कि क्या आप मुझे याद करेंगे क़यामत के दिन, तो आपने कहा कि आयशा हाँ, मगर 3 मौके ऐसे आएंगे कि ला यज़कुरु अहदुन अहदा, कोई एक किसी दूसरे को याद नहीं रखेगा, हत्ता कि मैं भी तुझे भूल जाऊंगा। वो कौन से 3 मुकाम है? इन 10 सिरात, पुल सिरात के ऊपर से गुजरते हुए। इतनी वहशत होगी, आप खुद सोचे, अल्लाह ना करे यहाँ आग लग जाए ना, तो फिर देखते हैं कौन किसकी बेटी और किसकी माँ है, जान अपनी लोग बचाते हैं। और आपने वो कहानी भी सुनी होगी ना बंदरिया और उसके बच्चे की, कि कैसे लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया कि एक केज में, पिंजरे में बंदरिया और उसके बच्चे को डाल दिया, और माँ बच्चा प्यार कर रहे हैं, और फिर उस केज को नीचे से गर्म करना शुरू किया, ज़रा जब पिंजरा गर्म हुआ तो माँ बेचैन हुई, बच्चे को उठा उठा के ऊपर जा रही है, छत पे लटक गई, लेकिन जब वो केज और गर्म होता गया, उसी बच्चे को नीचे डाल के माँ उसके ऊपर खड़ी हो गई। यौम या फिर रुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व आही। पढ़ लें सूरत अब्बस में अल्लाह ने कहानियाँ खोली हुई हैं कि आदमी उस दिन भाग रहा होगा माँ से, बेटे से, बाप से, शोहर से, भाई से, क्योंकि लिकुल लिमरी मिनहुम यौम इज़िन शानुन युग्नी। उस दिन हर बंदे को अपनी फिक्र पड़ी होगी। आपका अपना ही सामान ज्यादा हो एयरपोर्ट पे तो क्या आप किसी दूसरे का उठाएंगे? आप खुद ही परेशान है, बीमार है, तो क्या आप दूसरे की मदद कर सकते हैं? तो कैसे हो सकता है? तो पुल सरात, फिर दूसरा मुकाम मेज़ान के ऊपर, जब हाथ में नामे अमाल मिल रहे हैं, हाय किधर हो, यानी मीज़ान क्या, जब नेकियां तुल रही होंगी, पता नहीं रिजल्ट क्या निकलना है। हाय अल्लाह ही खैर, यहाँ अगर हम आपका सिर्फ और सिर्फ फातह के ट्रायल टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर देना तो आपके हाथ ठंडे हो जाए। रिजल्ट नाम ही कितना बुरा, कोई रिपोर्ट आनी हो, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग के वक्त बंदे का दिल धड़क रहा होता है कि पता नहीं अब अंदर से निकल के आना है। तो अल्लाह कहते हैं वहाँ क्या होगा, सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगियों के रिपोर्ट कार्ड्स होंगे। और फिर तीसरा, जब अमालनामे बट रहे होंगे, किसके हाथ में जाता है, फम मन या किताब बहू भी यमीनी और शिमाली। तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला कहते हैं ला तजजी नफ्स न नफ्स इन शैया, कोई काम नहीं आएगा। ये तुमने जो कहानियाँ रखी हुई ना, और ये देखिए मजहबी तबके की तरफ से स्टोरियाँ होती हैं, वो बाबा जी काम आ जाएंगे, वो बाबा जी ने कहा मेरे नाम की न्याज दो तो बस देखना मैं तुम्हारे काम आ जाऊँगा। कर सकता है कोई? खुद ही फंसाओ, कोई बंदा तो दूसरे की मदद करेगा? कोई करना भी चाहे तो क्या उसको इजाज़त मिल जाएगी? हरगिज़ नहीं। इसीलिए फिर इसके बाद आगे फरमाया वला युक्बल मिनहा शफ़ातुन, सिफारिश भी काम नहीं आएगी। सिफारिश भी हमारे यहाँ बहुत मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। दो एक्सट्रीम्स हैं, कुछ कहते हैं कि सिफारिश है ही कोई नहीं, ना नबियों की, ना वलियों की, ना किताबों की, ना कुरान की, और कोई कहता है कि सब कुछ ही सिफारिश से हो जाना है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि सिफारिश होगी, बरहक है, लेकिन शराइत के साथ। यानी आप कहेंगे कि सिफारिश इंटरसेशन होगा लेकिन कंडीशनल है। पहली शर्त क्या है कि जिसके लिए सिफारिश की जा रही है ना, उसके पास कुछ काबिलियत तो हो। देखिए कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पढ़ चुके हैं 4 साल 6 साल, फिर किसी एमपीए की कोई सिफारिश आई तो हो सकता है आपको किसी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाए। और जिस बंदे ने मेडिकल पढ़ा ही नहीं, क्या उस एमएनए की सिफारिश की इसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लगा दें ये चलेगी? नेवर। उसको चपरासी की तो लग जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर की तो नहीं मिलेगी। तो कुछ सिफारिश के लिए काबिलियत हो। ये नहीं कि आप खुद नमाज भी ना पढ़ें और अपने हाफिज बच्चों की आस पे बैठे हुए हैं कि वो हमारी सिफारिश कर देंगे, वो तो वहाँ पहचानने से इनकार कर देंगे आपको, शक्लें बदल जाएंगी। जहन्नुम के अजाबों ने माँ बाप की शक्लें बदल दी होंगी अगर ऐसे हाफिज बच्चे लाए भी जाएंगे कि आओ अपने माँ बाप की सिफारिश करो, रिवायात में आता है वो पहचानने से इनकार कर देंगे। ये मेरी माँ ही नहीं है, वो तो बड़ी खूबसूरत होती थी। तो अच्छा तुम नहीं पहचानते, जाओ फिर इस औरत को वापस आग में डाल दो। ला चुकबलु मिनहा शफातन। फिर सर आप देखिए कि सिफारिश की एक दूसरी शर्त क्या है कि जिसके लिए सिफारिश की जा रही है उसके आमाल में कोई ऐसी रुकावट ना हो जो सिफारिश को एक्सेप्ट होने से रोक ले। मसलन बेनमाजी है, चलिए 100 बंदे उसकी सिफारिश करें, बेनमाजी के लिए कबूल ही नहीं। कोई जानी है, कोई कबायर का गुनाहों का शिकार करता है, यानी कोई ऐसी बिदत है, कोई अकीदे की खराबी है, कोई जिंदा मुर्दा की बात है, इससे नहीं होगा। आप इसको यूँ समझिए, देखिए कि दुनिया में सिफारिश कब होती है, रिजल्ट अनाउंस करने से पहले। जज साहब के पास एक फ़ोन आता है, फैसला बदल गया। क्या होता है अगर फैसला डिक्लेयर हो जाए और फिर फ़ोन आए सदर साहब का, वो कहेंगे सॉरी इट्स डिक्लेयर्ड। फैसले से पहले सिफारिश होती है ना दुनिया में, आखिरत में अपोजिट है। मेरा लिए इससे ज़्यादा खूबसूरत मिसाल आप नहीं समझ सकते सिफारिश के लिए, कि आखिरत की सिफारिश क्या है, फैसले पहले होंगे, सिफारिश बाद में होगी। बेसिकली सिफारिश एक कॉर्नर है, मैं आपको सादा सा लफ्ज़ों में बता दूं। जैसे आपका कोई स्कूल है, 100 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़े, अब उनकी आज ग्रेजुएशन सेरेमनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आपने यहाँ प्राइजेस का ढेर लगाया हुआ है। अब आप क्या कहते हैं कि खुद क्या देना, चलो शहर की किसी मारूफ शख्सियत को बुलाते हैं, किसी इमाम मस्जिद, किसी नेक शख्स, किसी को भी आप बुलाते हैं और आप कहते हैं आइए ज़रा अपने हाथों से हमारे बच्चों को गिफ्ट्स दे दें। आप सब ने डिसाइड किया हुआ है ना, गवर्नमेंट जो आपकी मैनेजमेंट है उसने लिखा हुआ है ना किस बच्चे को फर्स्ट देना है, सेकंड, और उसके रिजल्ट की बेस पे। वो क्या करेंगे, वो आएंगे गेस्ट ऑफ ऑनर, सलाम दुआ करेंगे, अच्छा ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। क्या वो चॉइस रखते हैं कि फर्स्ट का प्राइज़ थर्ड को और थर्ड का फर्स्ट को दे दें? ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चेंज कर सकते? ये है सिफारिश। अल्लाह ताला ने सारों के हिसाब किताब से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके लगा के रख लिए हुए हैं। सब कुछ है, डिसाइडेड है कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितनी कुर्बानी दी, आपने कितने मौके ज़ाया किए, कितने अवेल किए, सब रिजल्ट तैयार है। नबी और नेक लोग जो होते हैं ना जिंदगी में, लोग उनको इनका ड्यू हक नहीं देते। लिख लें, हाल की शख्सियत के साथ रहना बड़े सब्र का मामला होता है, माजी की शख्सियत के गुण गाना कौमों का शुआर होता है। आज हम जो नबी के नाम पे नाते पढ़ के रोते हैं ना, ये इसलिए कि वो अब हमारे लिए माजी की शख्सियत है, हाल के उलमाए कराम के हम लतीफे बनाते हैं। बात समझ रहे हैं? अपने दौरे हाजिर के नेक लोगों को बर्दाश्त ही कर लेना तो बड़ी बात है, और जब वो नहीं होते तो लोग उनके गले में फूलों के हार डाल के तस्वीरें लटका देते, होता कि नहीं होता? और माजी के उस्तादों के किस्से भी बड़े अच्छे लगते हैं, हाल के उस्ताद के साथ जीना ये बड़े सब्र का काम होता है, जो ये कर जाता है वो तर जाता है। अब ये क्या हुआ, इन लोगों ने दुनिया में जब अल्लाह के दीन का काम किया तो लोगों ने इनकी कदर ना की। पढ़ेंगे सूरत नूह, सूरह कमर पढ़िए, हजरत नूह को पत्थर मारते थे लोग, किट किट किट, उंगलियां कानों में ठोसते थे, मुंह पे कपड़े ले लेते थे कि पीछे हो जा, मैं तेरी शक्ल नहीं देखनी। आज देखिए, उसी जब वो नूह चले गए, उनकी दौर के जो लोग थे लात मनात उज्जा, उनके नाम के बुत बना के रखे हुए। बात है, तो अल्लाह उन नेक लोगों को क्यामत के दिन डिस्प्ले देगा, कमन तुम्हें इज्जत नहीं मिली थी, कम मिली थी, जो मिली थी वो बहुत थोड़ी थी, तुमने तो इतना बड़ा काम किया, लोगों ने तुम्हें उतना क्रेडिट नहीं दिया, आओ आज हम तुम्हें देते हैं। तो ये किस्म का प्रोटोकॉल है, असल फैसला अल्लाह का है। और ये मौजू हम आगे जाके बहुत पढ़ेंगे, अभी आज के लिए बस इतना भी काफ़ी है, समझ गए हैं कि सिफारिश होगी लेकिन उसकी कुछ शरायत है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है इसमें, अब देखिएगा, वला यू खजु मिनहा अदलुन, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए रेंसम, करे कोई भरे कोई, बाप के बदले में बेटा, बेटे के बदले में बाप। दुनिया में क्या, और यहूद में ये आम था, इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ था बनू कैनका और बनू नज़ीर और बनू, तीसरा इनका कबीला था बनू कुरैज़ा। जो कैनका था ना बड़े अमीर कबीर कबीला था, बनू कुरैज़ा जो थे वो ज़रा गरीब कबीले थे। तो जैसे आपने सुना होगा दुनिया की और कौमों में भी होता है ना कि शूदर जो हैं और ब्राह्मण, फ़र्क है ना, कि ब्राह्मण जो है वो भगवान के सर से पैदा हुए हैं और शूदर उसके पाँव से पैदा हुए हैं, तो क्लासिफिकेशन है ना, कॉलोनी बनाते हैं। इनमें भी यही था, गलत काम कोई करता था उसकी जगह उसके गुलाम को मुलाजिम को सजा देते थे। अल्लाह का तला यू खजु मिन हादलुन, ये तो नहीं होगा कि बेटी गलत काम करे तो माँ के अल्लाह जी मुझे इसकी जगह आग में डाल दें, इसको निकाल दें, और वला हुम युनसरून, ना उनकी मदद की जाएगी, आराम से बैठो अपना काम खुद करके लाओ। अब देखिए कि इसमें अगर आप देखें ना, हर लिहाज से अजाब को दूर करने की मुकम्मल तौर पे नफ़ी कर दी, यानी कोई तरीका ही नहीं है कि तुम्हारा अजाब दूर हो, जिस पे जुर्म साबित हो गया उसके साथ ही मामला होगा, एक की जगह दूसरा नहीं बचेगा, किसी की सिफारिश जो है वो उसको फ़ायदा नहीं देगी, जुर्माने और मुआवजे अदा करके मुजरिमों को छुड़ाया नहीं जाएगा। और एक आखिरी चीज़ होती है, लोग असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, थानेदार साहब को फ़ोन करा दिया, MPA से फ़ोन करा दिया, अल्लाह कहते ला यंसुरून, कोई किसी की मदद भी नहीं करेगा कि किसी पे करे, तो उस दिन फिर मदद किसकी होगी, सिर्फ अपने अमलों पे। ये जो मैंने बीच में रेफरेंस दिया ना सूरत अब्बस की आयतें, यौम यफिरुल मरु मिन अखी, तो ये आयत नंबर 34 से 37 है। आपका काम क्या है कि आपने नोट्स में 3-4 लाइनें छोड़ दीजिए और बाद में जाके खुद खूबसूरत तरीके से आपने इसका तर्जमा लिखना है। इसी तरह सूरत मुमतहना की आयत नंबर 3 में भी आता है, लन तनफाउकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम, क़्यामत के दिन ना तो तुम्हारे रिश्ते नाते कुछ फ़ायदा देंगे ना तुम्हारी औलादें। यौमल क़ियामत यफ़सिलु बैनकुम, क़्यामत के दिन वो तुम्हारे दरमियान जुदाई डाल देगा, और वल्लाहु बिमा तअमलूना बसीर, तुम जो करते हो अल्लाह ताला उसको खूब देखता है। इस आयत को पढ़ के क्या लगा, खुद से पूछिए कुछ इसमें हिकमत दिखी? मुझे तो ये देखी कि मैंने किसी के लिए रब को नाराज़ नहीं करना, सॉरी, ना कल आपने मेरी सिफारिश करनी है, ना आपने मेरे काम आना है, ना आपने मेरी जगह कब्र में जाना है, ना पुल सरात से गुजरना है, तो भाई आई एम ओके विथ माई सेल्फ, बिल्कुल अपने आप को रखें। और दूसरी चीज़ इससे क्या पता चलती है कि जब अल्लाह किसी कौम को चुनता है तो फिर उनका हिसाब भी सख्त लेता है।